नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
प्रदर्शनी में राज्य की विविध शिल्पकलाओं, आधुनिक उद्योगों, सशक्त MSME और उभरते उद्यमियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें हस्तशिल्प, वस्त्र, चमड़ा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और आयुष आदि प्रमुख क्षेत्र भी शामिल हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की समृद्ध कला, संस्कृति और व्यंजनों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। ये व्यापार प्रदर्शनी 29 सितम्बर तक चलेगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
बाद में प्रधानमंत्री राजस्थान में 1,22,100 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे बांसवाड़ा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम नई दिल्ली में भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन के इस आयोजन में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, खाद्य स्थिरता और पौष्टिकता तथा जैविक खाद्य उत्पादन में भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इस आयोजन में 21 से अधिक देश, 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा 10 केंद्रीय मंत्रालय हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी है। इसके तहत अगले 3 वर्षों में मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में 5,000 MBBS सीटें और PG की 5,000 सीट बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे देश में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और छात्रों को भारत में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अगले साल होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की संभावित तिथि की घोषणा कर दी है। बोर्ड के अनुसार परीक्षाएं अगले साल 17 फरवरी से आयोजित की जाएंगी। CBSE ने कहा कि ये तिथियां अस्थायी हैं और स्कूलों द्वारा उम्मीदवारों की अंतिम सूची जमा करने के बाद अंतिम तिथियां जारी की जाएंगी। पहली बार कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार आयोजित की जाएगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार सोनम वांगचुक की 6ठी अनुसूची और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग पर लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि संवाद प्रक्रिया से अभूतपूर्व परिणाम सामने आए हैं। लद्दाख की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को 45% से बढ़ाकर 84% कर दिया गया है। परिषदों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। लेह में कल हुई हिंसक झड़पों के बाद लगाए गए प्रतिबंधों के बाद स्थिति अब नियंत्रण में है। रात्रि के दौरान किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। भारत एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। कल रात दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में Super 4 में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 41 रन से हराया। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज दुबई में रात 8 बजे एक और Super 4 मुकाबले में बांग्लादेश का सामना पाकिस्तान से होगा। विजेता टीम फाइनल मैच में भारत के साथ खेलेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के अग्रदूत और भारतीय जनसंघ के वरिष्ठ नेता थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पंडित दीनदयाल के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अंत्योदय के सिद्धांत प्रत्येक देशभक्त के लिए प्रेरणादायक हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। वे 30 मई 2026 या अगले आदेश तक भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। कोलकाता और आसपास के इलाकों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और विदर्भ में आज अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इधर दिल्ली में साफ मौसम बना रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।